रिकॉर्डिंग करना है
तुम्हारा, भी स्टार्ट करेंगे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़े समय में आया हूँ
Jai Ram Dhamma Dhamma
जय ओम विष्णुपाद परमहंस पूज्यगचार्य विद्वान गेश्वर चंद्र भक्ति नंद स्वामी प्रभुपाद महाराज की गोपनाथ श्री श्री गोनता की श्री श्री राधा गिरधारी की श्री जगन्नाथ सुभद्र बलराम की श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि की और चैतन्य पीरन से की इस्कॉन मीरा रोड यात्रा की All glory to the Samadhi Bodhi. All glory to the Samadhi Bodhi. All glory to the Samadhi Bodhi. All glory to Sri Guru and Sri Karana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Jnantimirandasya Jnananjana Swakya. Shri Chaitanya Manavestam Avidamena Swayam Rupa Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna I'll just say it in English and translate. Srimad Bhagavatam ki 11th skand mein Karbhajan ne is prakar se updesh diya Maharaj Dhimmi ko. Krishna Varnan picture Krishna Sangha Pukhansa Parashadam Yagesh Samkirtan prior Janti Hithi Umedasa. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential companions. Is shloka mein ये स्थापित किया जा रहा है कि इस कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं उस रूप में कि वह सदा हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं. हमारे वैदिक शास्त्र में अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा ये स्थापित किया जाता है कि परम भगवान प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में. भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं यदा यदा धर्म से ज्ञान भक्ति भारत, अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूँ। किस लिए? पाई तनाया साधु नाम बिना चित्र दुष्कृता धर्म संसपनाथाया सम्मी योगी योगी। भगवान प्रकट होते हैं किस लिए? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। इस विषय में सातवें स्कंद में आपको प्रहलाद महाराज का उपदेश प्राप्त होता है और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं सातवें स्कंद में कि आप अलग अलग रूप में प्रकट होते हो, कभी पशु के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, पर इस कलियुग में आप प्रकट हो गए छुपे हुए रूप में, छन्ना अवतार। छन्ना अवतार का अर्थ है छुपा हुआ अवतार, और दूसरे शब्द में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, पर वो प्रकट होते हैं भक्त के रूप में। ये दावा नहीं करते कि वो स्वयं भगवान है। तो संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में हमें जानते हैं कि वो स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे आन्य, राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, और इसके पीछे जो इतिहास है वो आपको शायद सुबह की क्लास में समझाया था। तो भगवान जब प्रकट होते हैं अपने ही सनातन साथियों के साथ प्रकट होते हैं, जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो उनके ही सनातन साथी माँ बाप भाई मित्रों के रूप में प्रकट हुए थे। जो असुर थे वो भी भगवान के भक्ति हैं, जैसे जय विजय ये असुर बन गए थे भगवान की लीला को और मधुर बनाने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता भगवान के माता पिता बने थे, और ये हैं नंद महाराज और यशोदा माता के अवतार। जगन्नाथ मिश्रा और सची माता नवद्वीप में निवास कर रहे थे। आज से 500 साल पूर्व बंगाल का जो स्थान था भारत का सबसे धनी और प्रसिद्ध स्थान था, और विश्व का सबसे धनी और प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? भारत का। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता की 8 बेटियां हुई थी पहले, जिनका जन्म के साथ ही श्री मृत्यु हो गई। फिर उनके एक बेटे प्रकट हुए थे जिनका नाम था विश्वरूप, और फिर परम भगवान प्रकट हुए थे। भगवान प्रकट हुए थे सोनार रंग के, और प्रकट हुए थे जिस समय पूरा समाज हरि नाम का उच्चारण कर रहा था। और भगवान जब प्रकट हुए थे उनको अनेक नाम दिए गए थे, आपके हमारे एक दो नाम होंगे, तो भगवान के हजारों नाम हैं। और भगवान प्रकट होने पर उन्हें अनेक नाम दिए थे, एक नाम दिया था विश्वम्बर। उनके नाना जी जो थे नीलम्बरा चक्रवर्ती बड़े अच्छे जोशी थे, तो उन्होंने भगवान की जन्मपत्री बनाई थी जिसमें उन्होंने ये देखा कि ये बालक अलग अलग युगों में प्रकट होता है, और ये बालक स्वयं भगवान है। तो निर्मल चक्रवर्ती ने ये बताया कि जो बालक प्रकट हुआ है स्वयं भगवान अलग अलग युगों में प्रकट हो चुके हैं, और ये नहीं बताया यही लड़का भविष्य में सन्यास भी ग्रहण करेगा। और उनके अनेक नाम थे, एक नाम दिया था अद्वैताचार्य की पति ने निमाई, और जैसे आप जानते हो भगवान प्रकट हुए थे किस दिन, हरि नाम के प्रचार हुए। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, बाल लीला भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। एक समय एक यात्री उनके घर में आए थे रहने के लिए, जगन्नाथ मिश्रा ने उनका बड़ा स्वागत किया और ब्राह्मण से कहा भोजन खाने के लिए। ब्राह्मण ने अपना भोजन तैयार किया और जो भोजन अर्पण कर रहा था तो शैतान निमाई ने आकर क्या किया, उस भोजन को झूठा कर दिया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि चल भगवान की इच्छा कि मैं भूखा न हूं। तो ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण है, वो किसी को दोष नहीं देते, अगर कुछ कठिनाई भी हो तो यही सोचते हैं कि हमारे पापों का परिणाम है। पर जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि नहीं नहीं आपको खाना जरूर चाहिए। तो इस ब्राह्मण ने फिर से प्रसाद बनाया, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगा रहे थे, भगवान ने फिर आकर उसे झूठा कर दिया और पिता ने बड़ा अपमान महसूस किया। आखिर ये ब्राह्मण उनका अतिथि था, तो उन्होंने बेटे को दूर थोड़ी दूरी पर भक्ति घर में एक कमरे में बंद कर दिया। तीसरी बार जब भोग लग रहा था, बन रहा था, लगभग आधी रात हो गई थी, तो भगवान फिर से वहां पहुंच गए। जब फिर से पहुंचे तो ब्राह्मण आश्चर्य हो गया था, उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि तुम्हें बंद कर दिया कमरे में, तुम आ नहीं पाओगे। तो भगवान ने कहा कि भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की, उन्होंने अपना कृष्ण भगवान का रूप प्रकट किया और कहा तुम ये जो भोग लगा रहे हो किसको लगा रहे हो, मुझे ही लगा रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा विष्णु विष्णु क्या अपराध। फिर भगवान ने अपना कृष्ण का रूप प्रकट किया और उस ब्राह्मण से कहा कि किसी को ये सूचना मत देना कि तुमने ये रंग ये रूप देखा है। इस प्रकार भगवान की अनेक लीला हैं। एक समय चोरों ने उन्हें चुरा लिया था और ये भावना प्रयास कर रहे थे कि दूर ले जाकर उनके गहने चुरा लें, पर भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा जहाँ भी वो जाते थे वो लौट कर आ जाते थे भगवान के घर पर ही। तो भगवान ने वहाँ फिर उन चोरों ने भगवान को वहीं छोड़ दिया। जब उन्होंने चलना शुरू किया तो उनके पैरों के निशाने, पैरों में भगवान विष्णु के चरणों में जो दिव्य लक्षण होते हैं उनका छापा जमीन पर पड़ रहा था। पहले माता पिता ने सोचा कि ये शायद घर में जो विग्रह था उनके दामोदर गोपाल का उसके निशाने हो। फिर माता ने देखा कि यही लक्षण हैं उनके पैर, बेटों के पैरों में। दूसरे शब्दों में जब भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर तो शुरू से ही अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति दावा करेंगे वो भगवान हैं, पर जब उनसे पूछा जाए अद्भुत लीला प्रकट करने के लिए तो इस कार्य में वो संभव रहते हैं, सफल नहीं रहते। तो भगवान ने शुरू से अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। एक समय जब वो छोटे से ही थे, एक खूबसूरत पिल्ले को घर में ले आए थे और उनके माता ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, पिल्ले को घर में कैसे ला सकते हो। भगवान ने कहा कि अगर तुम इस पिल्ले को घर में नहीं रखोगे तो मैं भी घर में नहीं रहूँगा। तो एक दिन जब भगवान स्नान के लिए गए थे, माता ने पिल्ले को छोड़ दिया, वो पिल्ला घर से चल पड़ा और बाजार में घूम रहा था। तो भगवान को सूचना मिली कि पिल्ला घर में नहीं है, माँ ने घर से बाहर कर दिया है, तो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने मित्रों को भेजा, ढूंढ कर लाओ कहाँ है ये पिल्ला। और जब वो ढूंढे थे तो उन्होंने क्या देखा, ये देखा कि पिल्ला शहर के बीच में दो पैरों से नाच रहा था, दो हाथों के ऊपर उठाए हुए भगवान के हरि नाम का उच्चारण कर रहा था और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। और पूरा नवद्वीप जब ये सूचना मिली तो सब ने कहा हिमाई बड़ा चमत्कार दिखा रहा, पर स्वयं ही जरूर कोई खास दिव्य व्यक्ति है। और सबके समक्ष वो पिल्ला सबको हरे कृष्ण कहते हुए एक रथ भगवान ने भेजा था, भगवान के नाम हो गया। तो पूरे शहर ये समझ पाए कि निमाई जो है साधारण बच्चा नहीं। छोटी आयु में ही उन्होंने संस्कृत भाषा सीखना शुरू कर दिया था। गंगादास पंडित उस समय के बड़े विद्वान थे जिनसे उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। 8 साल की आयु में एक शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया था और 10 साल की आयु तक बड़े विद्वान बन गए थे संस्कृत भाषा में। उस समय जो भारत के जो प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे सब थे लगभग नवद्वीप स्थान में। और निमाई छोटी आयु में ही बड़े पंडित बन गए थे, उनको पूरे समाज में उन्हें आदर दिया जा रहा था कि बड़े विद्वान हैं संस्कृत के। और उस समय सूचना मिली थी कि वहाँ के एक प्रसिद्ध कश्मीर पंडित आना चाहते हैं नवद्वीप में, और उनका नाम था दिग्विजय केशव कृष्ण। उन्होंने सूचना भेजी थी कि नवद्वीप शहर से जो भी प्रसिद्ध पंडित है उनको आगे रखा जाए अध्याप संस्कृत भाषा पर डिबेट करने के लिए। तो नवद्वीप के पंडितों ने सभा बुलाई, सब घबरा गए थे उनका नाम सुनते ही, सब हिचक रहे थे उनसे डिबेट करने में। ये दिग्विजय केशव कृष्ण ने लगभग सबको हरा दिया था। फिर उन्होंने ये निर्णय किया कि हमारे शहर के जो सबसे छोटे पंडित हैं उनको आगे रखा जाएगा, और अगर किसी प्रकार से केशव कश्मीरी ने हमारे शहर के छोटे पंडित को हरा भी दिया तो हम कह सकेंगे कि आखिर उसने बच्चे को हराया। और अगर किसी प्रकार से हिमाई उन्हें हरा दे तो हम कह सकेंगे अगर हमारे शहर के बच्चा हरा सकता है तो दूसरों की तरफ हाथ छोड़ो। केशव कश्मीरी मिले थे ने माई को गंगा के तट पर, और केशव कश्मीरी तो अपने शिष्य सबके साथ आ रहे थे और निमाई को मिले थे कहाँ, गंगा के तट पर। निमाई के कहने पर उन्होंने 100 श्लोकों की चर्चा की रचना की, जिसमें गंगा की प्रशंसा कर रहे थे। और उन्होंने निमाई से पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे लगा। निमाई ने एक बार सुनने से ही इन 100 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था। और निमाई ने जब 100 श्लोक वापस सुनाए केशव कश्मीरी को, वो विश्वास नहीं कर पाए कि इतनी तेजी से उन्होंने इन श्लोकों की रचना की थी। और निमाई ने एक बार सुनने से ही इन श्लोकों को क्या कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। जो व्यक्ति एक बार सुनने से ही कंठस्थ कर ले, उसे क्या कहा जाता है, श्रुति धारा। आप देखते हो कि सूत गोस्वामी ने भागवतम सुनी थी शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, और एक बार सुनने से ही सारे श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था। तो जब निमाई ने श्लोकों की कमजोरी सुनाई तो केशव कश्मीरी उनको उत्तर नहीं दे पा रहे थे। और जो निमाई के विद्यार्थी थे वो हंसी उड़ा रहे थे, पर निमाई ने उन्हें रोक दिया। आखिर चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिष्यास्त्र के 3rd श्लोक में किस भाव पर बल दिया है, विनम्रता के भाव पर। निमाई ने रोक दिया अपने विद्यार्थियों को उनकी हंसी उड़ाते उड़ाने के लिए। निमाई ने कहा कि ये थके हुए हैं, कल उतर देंगे। तो केशव कश्मीरी जब घर गए, केशव कश्मीरी थे सरस्वती देवी के भक्त, जब घर गए उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आपने हमेशा मेरा सहयोग दिया है, पर आज आपने सहयोग नहीं दिया। तो सरस्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती, क्योंकि निमाई कौन है, स्वयं भगवान है। तो छोटी आयु में ही निमाई की महिमा बढ़ गई थी, वो संस्कृत के विद्वान बन गए थे। और 10 साल की आयु में उन्होंने एक संस्कृत का पाठशाला भी खोल दिया था। उस समय एक भक्त थे जिनका नाम था खोला बेचर श्रीधर। खोला बेचर श्रीधर भौतिक दृष्टि से उनका एक बड़ा साधारण व्यापार था। क्या था व्यापार, केले के पत्तों के प्याले बनाने और केले बेचने। निमाई पंडित रोज उनकी दुकान में जाते थे अपने स्कूल में पहुंचने से पहले। और निमाई का उनके साथ बड़ा गहरा संबंध था। निमाई पंडित खोले बजे श्रीधर की दुकान में जाते थे, पूछते थे उनसे क्या है केले का भाव, तो कहते थे 1 पैसा दर्जन। निमाई कहता था नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत नफा कमा रहे हो, मुझे पता है कि तुम बहुत धनी व्यक्ति हो। खोले बजे श्रीधर कहता था तुम आके देख लो मेरे पास कितना धन है। खोला बजे श्रीधर निवास कर रहे थे एक कमरे में जिसकी छत भी नहीं थी, उनके पास पहनने के लिए एक ही धोती थी और पूरे घर में एक ही बर्तन था, एक ही बर्तन। और फलवते श्रीधर अभी छोटी आमदन का 50% खर्चे थे किसके लिए, गंगा की सेवा के लिए। और बिल्कुल साधारण जीवन बिताते थे और 24 घंटे महामंत्र का उच्चारण करते थे। उनके जो पड़ोसी थे वो चिल्लाते थे, कहते थे ये भूखा व्यक्ति है, इसे भूत सवार हो गया है, रात को नींद नहीं आती, जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 जोर से करता है और हमें भी सोने नहीं देता। तो सब उसके दुश्मन बन गए थे। तो निमाई पंडित का बड़ा गहरा संबंध था इस खोलाबच श्रीधर के साथ। कई बार खोलाबच श्रीधर कहते थे उन्हें, तो मेरी दुकान में क्यों आते हो, दूसरे की दुकान में क्यों नहीं जाते। और कई बार निमाई पंडित इतनी बहस करते थे खोलाबच श्रीधर के साथ कि खोलाबच श्रीधर मुफ्त में केला दे देते दे थे कि निमाई उनको अकेले छोड़ दे। तो इस प्रकार खोलाबच श्रीधर निमाई का बड़ा गहरा संबंध था। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था नवद्वीप में, और शिवास आंगन जो कि इसका उनके मंदिर के निकट में ही है, शिवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु रोज कीर्तन करते थे। और उस कीर्तन में केवल जो उनके प्रिय भक्त थे उन्हें ही अधिकार था अंदर आने के लिए। दूसरे शब्द में उनके जो प्रिय भक्त थे उन्हें ही इजाजत दी जाती थी अंदर प्रवेश करने के लिए। एक समय एक ब्राह्मण था, बड़ा तपस्वी, केवल जिंदगी भर दूध और फल ही खाया था उसने। तो बार बार आया श्रीवास पंडित के यहाँ, कहने लगे मुझे महाप्रभु की लीला का दर्शन लेने दो। श्रीवास ने कहा नहीं, ये दर्शन केवल उनके लिए है जो महाप्रभु के सुना प्रिय भक्त हैं। तो खैर उसने बड़ी जिद की, तो दरवाजे के पीछे श्रीवास ने उन्हें रख दिया। दरवाजे में एक छोटा सा छेद था जिसके द्वारा वो देख रहे थे महाप्रभु की अद्भुत लीला, ना किस प्रकार महाप्रभु नाच रहे थे गा रहे थे। तो महाप्रभु नाच रहे थे गा रहे थे, पर एक दिन उन्होंने अपना नाचना रोक दिया और श्रीवास से पूछा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो श्रीवास ने घबरा कर कहा यहाँ एक ब्राह्मण है जो बड़ा तपस्वी है, जिसने जिंदगी भर केवल दूध और फल खाया है, जिसने विनती की थी कि मुझे अंदर आने दो महाप्रभु की दिव्य लीला का दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो मैंने उसे इजाजत दे दी। तो महाप्रभु गुस्से होकर कहने लगे ये थोड़ी कि केवल फल खाने से और दूध पीने से मुझे कोई समझ सकता है, जब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं जुड़े जब तक ये जीवन असफल माना जाता है। केवल फल और दूध खाने से भक्ति नहीं होती, भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। फिर महाप्रभु जी की कृपा से ये ब्राह्मण भी भक्त बन गया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रोज अपना संकीर्तन आंदोलन कर रहे थे। शुरू में तो उनका बचपना बड़ा शरारती था, फिर छोटी आयु में वो संस्कृत के विद्वान बन गए। उसके पास पश्चात उन्होंने पाठशाला खोला, फिर बांग्लादेश गए जहाँ की उन्होंने उस स्थान के जो कि आज बांग्लादेश कहलाता है, उस समय तो बंगाली था, वहाँ तपन मिश्र नाम के एक भक्त को मिले थे जिन्हें उन्होंने कहा था कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भक्ति योग। तो इस प्रकार और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया। शिवास आंगन में संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। जब उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया शिवास ठाकुर के घर में, कईयों ने उनका विरोध भी किया, खास करके जो मुसलमान थे नवद्वीप में। उस समय भारत में खास करके बंगाल में मुसलमानों का राज्य आरंभ हो गया था। उस समय बंगाल के राजा थे हुसैन शाह और नवद्वीप स्थान में एक चंद काजी नाम के भक्त था। चंद काजी जिन्हें कंस का अवतार माना जाता है। तो मुसलमानों ने शिकायत की चंद काजी कट्टर मुस्लिम था कि ये निमाई ने ये संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया है, अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, तो हमें रोकना चाहिए। साथ में जो हिंदू थे उन्होंने भी उनका विरोध किया, जो ब्राह्मण जाति के, उन्होंने कहा ये निमाई क्या ये हरिनाम संकीर्तन आरंभ किया है, मारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है, इसका उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो जब एक दिन कीर्तन हो रहा था कहाँ शिवा संगन में, तो चांद काजी ने अपने प्रतिनिधि भेजे पुलिस वाले, जिन्होंने सब भक्तों को पकड़ लिया, उनके मृदंगा को तोड़ दिया और भक्तों से कहा अगर तुम भविष्य में ये कीर्तन करोगे यहां तो हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, और तुम मानोगे नहीं तो तुम सबको मुसलमान बना देंगे। उन दिनों में मुसलमान बनाना बड़ा आसान था। अगर आपने किसी मुसलमान के घर में नौकरी कर ली तो मुसलमान बन जाते थे, या किसी मुसलमान की बाल्टी से एक बूंद पानी भी आ गया पर तो आप मुसलमान बन गए। तो चंद काजी के प्रतिनिधियों ने धमकी दी सब वैष्णव भक्तों के। जब चैतन्य महाप्रभु को ये सूचना पहुंची क्या घटना बीती थी, महाप्रभु ने कहा हम इसका विरोध करेंगे। महाप्रभु ने भक्तों को कहा सब आओ आज शाम को बत्ती लेकर टॉर्च लाइट। सारे भक्तों ने अपने घरों को सजाया और बड़े मोर्चा में सब आगे बढ़े कहाँ जाने के लिए, चंद काजी के घर जाने के। और उस शाम को लाखों लोग जुड़ गए थे इस मोर्चा में और सब चले महाप्रभु के साथ चंद काजी के महल में। महाप्रभु ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। किसका? चाणक्य जी का आदेश कि हरि नाम संकीर्तन बंद करो। चाणक्य जी ने देखा कि इतने बड़े मोर्चे में लोग आ रहे हैं, वो घबरा गए। चाणक्य जी छुप गया अपने घर में। अपने महाप्रभु वहां पहुंचे तो फिर इनकी छरछर हुई, और सबसे पहले चाणक्य जी इनकी पहचान थी नीलमराज चक्रवर्ती के साथ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाना जी तो मेरे बचपन के जान पहचान के हैं, तो अगर चाणक्य जी माई के गुस्से को ठंडा करने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मामा या चाचा क्रोधित होता है तो भतीजा शांत हो जाता है, भतीजा क्रोधित हो तो मामा या चाचा शांत हो जाते हैं। तो कह रहे थे कि क्रोधित नहीं होना चाहिए निमाई को। फिर दोनों की चर्चा हुई। निमाई ने कहा कि ये किस प्रकार का धर्म है, यहाँ की गाय की सुरक्षा नहीं होती, गाय सात माताओं में एक माता है। और चाणक्य जी ने स्वीकार किया कि हमारे धर्म में ये कमी है, और आगे बढ़कर निमाई ने चाणक्य जी से कहा कि भविष्य में ये आदेश दो कि तुम्हारे जो आगे के प्रतिनिधि भी आएंगे, कभी हरिनाम संकीर्तन को नवदीप स्थान में रोकेंगे नहीं। तो चाणक्य जी ने कहा जिस दिन मैंने अपने सिपाहियों को भेजा था शिवाज ठाकुर के घर में ये मृदंग तोड़ने के लिए, उस दिन रात को सपने में एक शेर आया जिसके बड़े तेज नाखून थे, और उस शेर ने मेरी छाती पर चीरा। ये देखो निशाने। जब भक्त ने निशाने देखे तो भक्त पहचानेंगे नरसिंहदेव भगवान थे। और वो शेर ने कहा कि अगर भविष्य में तुमने कभी भी निमाई के संकीर्तन आंदोलन को रोका तो फिर मैंने तुमको चीर देना है। तो चाणक्य जी कह रहा था कि मैं उस दिन रात से इतना घबरा गया कि मैंने भविष्य में ये निर्णय कर लिया तुम्हारे संकीर्तन आंदोलन को कोई रुकावट नहीं देनी। और चाणक्य जी ने आगे ये भी कहा कि मेरे जितने मुसलमान प्रतिनिधि थे जिन्होंने प्रयास किया था तुम्हारे संकीर्तन मन आंदोलन को रोकने के लिए, सब कुछ जैसे कहना उन्होंने विरोध करना शुरू किया, उनकी दाढ़ियों में आग लग गई। एक मुसलमान था जिसकी दाढ़ी थी, जो बार बार चाणक्य जी से कहता था निमाई के संकीर्तन आंदोलन को रोको नहीं तो हमारा पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो चाणक्य जी ने उसे कहा तुम दिन रात मेरे पास आते हो निमाई की शिकायत करने के लिए, पर जब भी मैं देखता हूँ तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो, ये क्या बात। तो फिर निमाई ने कहा तो फिर उस मुल्ला ने कहा ये बात सच है, जब से मैंने निमाई के द्वारा ये हरे कृष्ण मंत्र को सुना है ये हरे कृष्ण मंत्र में जीभ से निकलता ही नहीं। तो दिन रात ओ मुल्ला क्या हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहा था। तो इस प्रकार जब क्षेत्रीय महाप्रभु ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया, शिवास अंगन में वो अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे पर केवल प्रिय भक्तों के लिए। पर जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन लेकर गए चांद काजी के महल में, तो पहली बार चैतन्य महाप्रभु जी ने पब्लिक में सबके समक्ष नाचे और गाए। पहली बार पूरी प्रजा को मौका मिला उनके नाचने गाने को देखने के लिए, और कई घंटों के लिए कीर्तन करते गए चैतन्य महाप्रभु। 7-8 घंटे कीर्तन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को प्यास लग रही थी, तो पानी पीने कहाँ गए? खोला बच्चे श्रीधर के घर में। खोला बच्चे श्रीधर, जैसे मैंने कहा, भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब थे। उनके घर में एक ही प्याला था जिससे वो पानी पीते थे, भोजन खाते थे, और उस प्याले के विषय में कहा गया है इतना बदसूरत टूटा हुआ मुड़ा हुआ था कि कोई चोर भी उसे नहीं छुए। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके थके प्यासे थे, तो पानी पीने के लिए कहाँ गए? खोला बच्चे श्रीधर के कमरे में, और वो इसी झूठे प्याले जिससे जिसमें से खोला बच्चे श्रीधर पानी पीते थे, निमाई ने पानी पीना शुरू किया। और जब पानी पीना शुरू किया तो खोला बच्चे श्रीधर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे झूठे प्याले से नहीं पी सकते ये पानी। और निमाई ने कहा कि मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ इस पानी इस प्याले से पानी पीकर, तो इससे आपको उदाहरण मिलता है कि किस प्रकार परम भगवान अपने भक्तों को आदर देते हैं। एक समय जब चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन की समाप्ति पर भक्तों ने कहा हमें भूख लग रही है, तो महाप्रभु जी ने फिर से एक दिव्य लीला प्रकट की। उन्होंने एक आम का बीज था जिसको बो दिया, वो आम का बीज मिनटों में एक बड़ा पेड़ बन गया, और उस पेड़ में 200 आम थे। तो रोज कीर्तन समाप्त करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही आम का उत्सव करते थे, जिसमें हर भक्त को एक आम दिया जाता था। और ये जो आम थे लाल और पीले रंग के, और एक आम इतना भारी था कि एक आम इतना बड़ा था कि एक आम खाने से ही आपका पेट भर जाता था। तो और इस आम में अक्सर आम में घुटली होती है, और ये इस आम में कोई घुटली भी नहीं थी, कोई स्किन में नहीं, चमड़ा नहीं, सिर्फ मीठा आम। तो एक साल के लिए रोज कीर्तन के पश्चात चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ ये आम का उत्सव था मनाते थे, और हर भक्त को एक आम दिया जाता था। एक साल के पश्चात वो पेड़ अप्रकट हो गया और ये आम का उत्सव रुक गया। जब आप लोग ये नवद्वीप परिक्रम करते हो, किसी आम घाट गए थे आप लोग? आम घाट जाते हो जहाँ की इन्हीं लंबी दी थी। आज जब आप नवद्वीप धाम की परिक्रम करते हो तो उन स्थानों में जाते हो जहाँ की चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने दिव्य लीला प्रकट की थी। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, जैसे हमने कहा श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयान है। वे प्रकट हुए थे किस लिए? हरि नाम के प्रचार के लिए। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ प्रकट हुए थे, तो इन साथियों ने क्या किया? जो भक्ति का खजाना है उसके ताले तोड़ दिए। इसे खजाना में आप क्या रखते हो, महंगी चीजों को रखते हो ना। तो चैतन्य महाप्रभु के साथियों ने भक्ति के खजाने के ताले तोड़ दिए और क्या किया, खुले रूप से बिना भेदभाव के सबको क्या दिया, यह हरि नाम दिया। ये था चैतन्य महाप्रभु जी का उद्देश्य कि सबको यह हरि नाम दिया जाए। जब हरि नाम एक समय चैतन्य महाप्रभु बनारस में आए थे, यहाँ की और वो निवास कर रहे थे चंद्रशेखर नाम के एक भक्त के घर में। चंद्रशेखर का जन्म था नीची जाति में, पर वो थे महाप्रभु के प्रिय भक्त। हालांकि वो नीची जाति के थे, महाप्रभु उनके घर में निवास कर रहे थे। तो एक दिन तपन में सा चंद्रशेखर आए महाप्रभु से कहने कि यहाँ के मायावादी सन्यासी आपकी निंदा कर रहे हैं। क्या थी निंदा? क्यों, इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हैं और हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन करने के बजाय क्या कर रहे हैं, ये हरि नाम नाच रहे हैं। तो एक सभा में महाप्रभु को निमंत्रण दिया था इन मायावादी सन्यासियों को मिलने के लिए। इनके गुरु थे प्रकाश नंदन सरस्वती, जिनके साथ थे 10,000 मायावादी सन्यासी शिष्य और सब वेदांत सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। तो जब महाप्रभु सभा में गए, ये सारे सन्यासी बैठे थे ऊंचे मंच पर, महाप्रभु ने इन सन्यासियों को बड़ा आदर दिया। वो गए उस स्थान में पहले जहाँ की पाँव धोते हैं, मंदिर में प्रवेश करने पर पाँव धोते हैं, और उस स्थान में वहाँ बैठकर जहाँ गंध है, जहाँ पाँव धोते हैं, वहाँ बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। और ये मायावती सन्यासी कहाँ थे, ऊंचे मंच पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर से अपनी दिव्य लीला प्रकट की। उन्होंने अपने चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट किया जैसे लगा कि हजारों सूर्य इकट्ठे हो गए हैं। और जब इन मायावादी सन्यासियों ने देखा कि ये चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं गंदे स्थान में, उनके चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट हो रहा है, तो वो समझ पाए क्या कि ये व्यक्ति शायद नारायण है खुद। और फिर चर्चा हुई प्रकाश नंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु की, जिसमें प्रकाश नंद सरस्वती को ये समझाया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रकाश नंद सरस्वती ने कहा आप हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते, क्या पागलों जैसे नाचते हो गाते हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने देखा मुझे, ये कहा देखा कि मैं और कोई योग्यता नहीं है। गुरु ने क्या कहा, तुम केवल एक कार्य के योग्य हो, क्या, हरि नाम का उच्चारण। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश नंद सरस्वती और उनके 10,000 शिष्यों को प्रभावित किया हरि नाम के प्रति, और सारे मायावादी सन्यासी क्या, वैष्णव भक्त बन गए। इसी प्रकार एक समय एक बुद्धिस्टों के साथ उनकी चर्चा हुई थी और बुद्धिस्टों के साथ चर्चा हो रही थी तो चैतन्य महाप्रभु ने जो बुद्धिस्ट का सिद्धांत था उसको हरा दिया। तो जो बुद्धिस्ट थे उनके गुरुजी जो थे उनके शिष्य ने बड़ा अपमान महसूस किया, ये 12 ग्राम से हमारे गुरु को हरा दिया फिलोसफिकल डिस्कशन में। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हमें बदला लेना है। तो झूठा प्रसाद लेकर एक पीतल की थाली में रखकर सड़ा हुआ प्रसाद खाने को महाप्रभु को अर्पण कर रहे थे, लीजिए आपके लिए महाप्रसाद लाए हैं। जैसे ही वो प्लेट अर्पण कर रहे थे एक बाज आई ऊपर से, बाज ने वो प्लेट उठा ली, जो झूठा झूठा सड़ा हुआ प्रसाद था इन बुद्धिस्टों के ऊपर गिर गया। और जो थाली थी पीतल की वो गिर गई गुरुजी के माथे पर। वहाँ जब गुरुजी के माथे पर गिरी तो गुरुजी लगभग बेहोश हो गए। तो सारे शिष्यों ने बड़ा अपमान महसूस किया, शिष्यों ने सबके हृदय में क्रोध था कि हमने ये गलत भाव रखा था तब उसका ये परिणाम हुआ है। तो सारे शिष्य गए चैतन्य महाप्रभु के पास, कहने लगे हमने अपमान किया है, हमारे बुरे भाव थे उसका ये परिणाम है, कृपा करके आप हमारे गुरुजी को बचाओ। तो महाप्रभु ने कहा तुम जाकर गुरु के कानों में हरे नाम को सुनाओ। गुरुजी हरे नाम को सुनेंगे उनकी सुरक्षा होगी। तो शिष्यों ने जाकर गुरु के कानों में हरे नाम सुनाया और जैसे हरे नाम सुनाया गुरुजी होश में आए और सारे के सारे क्या बन गए, वैष्णव बन गए। इस प्रकार गुरुजी उनके हजारों बुद्धिस्ट शिष्य सब क्या बन गए, वैष्णव बन। तो चैतन्य महाप्रभु जो प्रचार कर रहे थे उन्होंने हर प्रकार के लोगों को भक्ति के साथ जोड़ा, बुद्धिस्टों को जोड़ा, मायावादी सन्यासियों को जोड़ा। और जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे पूरी प्रजा को जोड़ा। एक समय चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे गोपी 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 भाव प्रकट कर रहे थे, गोपियों का जो भाव है सबसे उत्तम भाव है और ये भाव समझना बहुत ही कठिन है। चैतन्य महाप्रभु ने खास करके गोपी भाव को बहुत ही आदर दिया है। तो एक व्यक्ति था संस्कृत का विद्वान छोटा विद्यार्थी, जिसने सुना कि महाप्रभु कह रहे हैं गोपी 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 गोपी, तो ये कहने लगा क्या है गोपी 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 गोपी, हरे कृष्ण बोलो, गोपी गोपी बोलने में क्या लाभ। तो महाप्रभु जा क्रोधित होकर डंडा लेकर उसके पीछे भागे, पर वो विद्यार्थी जो था भाग गया और उनके कई विद्यार्थी मित्र थे वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि अरे निमाई पंडित हम जानते नहीं कितना अपराधी है, मैं तो बच गया नहीं तो मैं मुझे मार देते। तो सारे विद्यार्थी के जो मित्र थे सब डंडा लेकर आए महाप्रभु के पास, कहने लगे अगर भविष्य में ऐसी हरकत हुई हम तुम्हें पीटेंगे। तो निमाय पंडित सोचने लगे, मैं प्रकट हुआ हूँ पतितों का उद्धार करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बड़ी सुंदर रचना में क्या कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार है। आप चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हो किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु यही सोच रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ये सोच रहे थे कि मैं प्रकट हुआ हूं पतितों का उद्धार करने के लिए, पर यहां ये लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, मेरे से लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या निर्णय किया, मुझे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और ये सूचना उन्होंने केवल उनके 5 प्रिय भक्तों को दी। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया कटवा में किसके द्वारा, केशव भारती के द्वारा। और संन्यास ग्रहण करने पर केशव भारती ने उन्हें नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए। आखिर चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है, और राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तेजी से वो बढ़ रहे थे जगन्नाथ के दर्शन लेने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। पर जब वो पहुंचे जगन्नाथपुरी मंदिर में, तो जगन्नाथ जी को देखते ही भक्ति भाव में बेहोश हो गए। और भक्ति भाव में बेहोश हो गए, पुजारी ने दरवाजा बंद करना था भगवान को भोग लगाने के लिए। और पुजारी के सामने समस्या थी क्या किया जाए, क्योंकि महाप्रभु लेटे हुए थे, सो रहे थे उनके ऑल्टर के सामने। तो उस समय एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था सर्वभौम भट्टाचार्य, जिन्हें बृहस्पति का अवतार माना जाता है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य आए पुजारी के निमंत्रण पर। उन्होंने देखा कि महाप्रभु के शरीर का कोई अंग भी हिल रहा नहीं है। फिर उन्होंने रुई रखी उनके नाक में, जो हिल गई थोड़ी बहुत, जिससे वो देख सके, समझ सके कि इसमें जान है। तो उनके कहने पर उनको उठाकर ले गए कहाँ, उनके घर में। थोड़ी देर बाद भगवान नित्यानंदा वहाँ पहुँचे। भगवान नित्यानंदा पूछ रहे थे लोगों से, यहाँ कोई सुनार रंग के सन्यासी आए थे। तो उन्होंने सुन लिया कि चर्चा हो रही है कि एक सन्यासी आया था जिसने भगवान को देखते ही, जगन्नाथ जी को देखते ही बेहोश हो गए, जिसे उठाकर वो ले गए हैं कहाँ, किसके घर। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में नित्यानंद जी पहुंचे। वहां जाकर भगवान नित्यानंद को पता था महाप्रभु को होश में कैसे लाने हैं, कैसे ला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हरे कृष्णा का कीर्तन किया। जैसे ही महाप्रभु ने कीर्तन सुना तुरंत ही उठ गए। जब वो छोटे भी थे रोना बंद करते थे जब हरि नाम सुनने का मौका मिलता था, तो महाप्रभु ने प्रकट अपने जाग गए और नाचने लगे। सर्व उम्र चार लगभग उनके दादाजी की उम्र के थे, 80 साल के थे उस समय। तो उन्होंने जब इस खूबसूरत सन्यासी को देखा, लंबे हाथ लंबा कद, तो उनके मन में यह भाव था, भय था, कहीं सुंदर सन्यासी माया से प्रभावित नहीं हो जाए। तो उन्होंने सोचा मुझे इस सन्यासी की सुरक्षा के लिए इसे वेदांत सूत्र का उपदेश देने दो। और 7 दिन के लिए लगातार वेदांत सूत्र का की व्याख्या वो देते गए। निमाई की कृष्णा चैतन्य ने चुपचाप ये सब सुना, कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं। तो केशव कश्मीरी तो सर्वोपराचार्य पूछने लगे, तुम्हें समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोला? तुमने एक शब्द कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं। तो सर्वोपराचार्य चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वेदांत सूत्र का जो संदेश है बिल्कुल साफ है, जैसे सूर्य की तेज रोशनी, पर आपने अगर सूर्य को बादल से ढक दिया जाए तो रोशनी पर प्रभाव असर आता है। तो उन्होंने कहा कि आपने अपना भाव अर्थ देकर वेदांत सूत्र का जो असली संदेश है उसको छुपा दिया है। और फिर आगे चर्चा हुई जिसमें एक आत्मनाम श्लोक है भागवतम का, उस पर चर्चा हुई। और सर्वोपराचार्य ने उस आत्मनाम श्लोक पर व्याख्या की 9 अलग अलग तरीकों से। और फिर उन्होंने महाप्रभु से निवेदन किया आप इसकी व्याख्या कीजिए। और महाप्रभु ने उसी श्लोक आत्मनाम श्लोक की व्याख्या की 64 अलग तरीकों से, और किसी प्रकार से रिपीट नहीं किया, बिल्कुल अलग अलग तरीके से 64 प्रकार से उसकी व्याख्या की। जब सर्वोपराचार्य के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य के मन में शुरू से विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, पर जब वो ये सुनाते थे सर्वोपराचार्य को तो सर्वोपराचार्य कहता था ये भगवान नहीं है पर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और जब सर्वोपराचार्य ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने किस रूप से 64 अलग तरीकों से इसकी व्याख्या की, तो वो समझ गए क्या ये स्वयं भगवान है। और फिर सर्वोपराचार्य ने 100 सुंदर स्तुतियों की रचना की जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना सद्बुज का रूप प्रकट किया, इसमें 6 हाथ हैं, 2 भगवान राम के, 2 कृष्ण के और 2 चैतन्य महाप्रभु के। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी की अनेक लीलाएं हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे पतितों के उद्धार के लिए। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर शांतिपुर में निवास करते थे। उन्होंने जब समाज की स्थिति देखी तो अद्वैताचार्य जो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं वो समझ पाए कि पतितों का उद्धार केवल भगवान ही कर सकते हैं। और उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आपको खुद प्रकट होना चाहिए। और फिर भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जी को सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माना जाता है। वैसे तो उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया था ग्रंथों की रचना करने के लिए, और जो सिद्धांत गोस्वामी ने छोड़ा है उसकी तुलना बहुत कोई नहीं कर सकता। पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु केवल 8 श्लोक छोड़ गए, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं। और ये 8 श्लोकों में पूरे वैदिक साहित्य का सार है। पहले श्लोक में चेतो दर्पण मार्जनम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान के नामों के उच्चारण का एक लाभ ये है कि तुम्हारे हृदय में जो मैल है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के रूप में, एक मैल जो है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो आप भक्तों से निवेदन किया जाता है हरि नाम को अपनाइए। और आज इस शुभ अवसर पर आप सबको ये निर्णय करना चाहिए कि हमने हरि नाम का उच्चारण करना है और ध्यान पूर्वक उच्चारण करना है। और अगर आप ध्यान पूर्वक उच्चारण करोगे तो उसका क्या लाभ होगा, काम क्रोध दो मोह मन मत्सर का जो प्रभाव है वो क्या नहीं समाप्त हो जाएगा, कम होता जाएगा। और इसके साथ आनंद बुद्धि वर्धनम, जो आनंद है असली आनंद मिलेगा, वो आनंद जो है बढ़ते जाएगा। तो गौर पूर्णिमा के दिन हम सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपने आप को स्मरण समर्पण करना चाहिए। वो चैतन्य महाप्रभु ने भारतवासियों को क्या आदेश दिया है, क्या आदेश दिया भारतवासियों को, आप सब भारतवासी हो, क्या आदेश दिया है, जनता सरकार के करो का आज सबको अपना उद्धार करना है। और दूसरे का उद्धार कैसे करोगे, प्रचार के माध्यम से। तो आज के दिन आप सबको ये निर्णय करना चाहिए कि हमने अपना उद्धार करना है। अपना उद्धार करने में कोई बुरा भाव नहीं है। तो आप में से कितने भक्त ये तैयार हो ये निर्णय करने के लिए कि आपने महाप्रभु जी की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताना है, और आपने ये संदेश दूसरों को भी देना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा था, बोलो कृष्णा भाजप कृष्णा बोलो कृष्णा शिक्षा। तो सबको कृष्णा का नाम लेना चाहिए, कृष्णा की उपासना करनी चाहिए और कृष्णा की शिक्षा स्वीकार करनी चाहिए, जो कि कहाँ प्राप्त होती है, गीता और भागवत में। तो आप सभी हरि नाम का जाप कीजिए। चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं, पर उसका ये अर्थ नहीं अगर आप गलत कार्य करोगे तो भी उनकी दया प्राप्त होगी। जब महाप्रभु देखते हैं कि आप उनकी शिक्षा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तब एक कदम उठाओगे महाप्रभु 10 कदम उठाएंगे। और ये जो आपका सुंदर मंदिर तैयार हो रहा है, किस लिए, इस मंदिर में गौणिता की बड़ी सुंदर मूर्तियां होंगी और लोग आएंगे मुख गौणिता के दर्शन के लिए। और मंदिर का असली उद्देश्य क्या है, मौका देना है जिसके द्वारा बजीव भगवान का के विग्रह का दर्शन ले सकें और ये संदेश आप भक्तों को आगे भी पहुँचाना है। तो आप सब इस मंदिर को तैयार करने में पूरा सहयोग दीजिएगा। कृपा करके प्रयास किया जा रहा है कि अगले 6 महीने में मंदिर तैयार हो जाए। क्या ख्याल है आपका, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हाँ आप सब जुड़े हुए हो सब, अभी कुछ पिछले महीने हमने पूना मंदिर के उद्घाटन किया था, भारत के राष्ट्रपति आए थे उद्घाटन करने। उस मंदिर की तैयारी में उस मंदिर के 40,000 भक्तों ने सहयोग दिया, मतलब कि जितने भक्त थे सब जुड़े, सब अपने मित्रों के पास गए, मित्रों के पास गए, रिश्तेदारों के पास गए और सब मिलकर 40,000 लोगों का नाम और पता है जिन्होंने मंदिर बनाने में दान दिया। तो आपका मीरा रोड पूना से छोटा है क्या? आप आपके पास तो पूरा बॉम्बे शहर है। तो आप सभी जुड़िए उत्साह के साथ। शास्त्र में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान का मंदिर बनाता है, बनाने में सहयोग देता है, उसको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर आप सब ये निर्णय कीजिएगा कि हमें महाप्रभु जी की शिक्षा को अपनाना है। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए। जैसे इस समय मायापुर में उत्सव चल रहा है, 70 से अधिक देश के भक्त आए हैं और आज विश्व के कोने कोने में यह हरि नाम का उच्चारण हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश संक्षेप में यह है, हरि नाम को अपनाओ, गीता भागवत पढ़ो, साधु संगत का लाभ उठाओ और भगवान की आचर विग्रह की उपासना करो। इस प्रकार जहाँ हो वहाँ रहते हुए आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। अब तैयार हो इसे स्वीकार करने के लिए? सब तैयार हो? हरे कृष्ण। मुझे अभिषेक के लिए पहुंचना है 5 बजे बड़े मंदिर में। बोले सब हरे कृष्णा
हरे
कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब बैठे यहाँ, अभी यहाँ ही रहोगे कि घर जाओगे? अभिषेक कितने बजे आपका?
5 बजे।
मुझे जू पहुंचना है। हरे कृष्णा।